वही आस्था सीधे अपनी कमरे में अरमान को ले गई थी और वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के कितने ही साल घर में गुजारे थे। हालांकि उस वक्त आस्था और नानी माँ दोनों एक ही कमरे में रहा करती थी, बाकी सारे कमरे घर के खाली ही पड़े रहा करते थे। इतना बड़ा घर उन्हें काफी खाने को देता था, क्योंकि घर भले ही मामूली सा था, कच्चा था, लेकिन उस घर में इतनी ठंडक थी कि वहां पर एसी चलाने की भी जरूरत नहीं थी। काफी सबको अच्छा महसूस हो रहा था, खासकर गांव की फ्रेश और ताजी हवा सबको बहुत भा रही थी। अब शेफ ने खाना जल्दी रेडी करवा दिया था, नानी माँ ने खाना लगवा दिया और सब लोगों ने एक साथ नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाया। गांव में टेबल कुर्सी वगैरह मौजूद नहीं थे, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा सुख सुविधा का सामान मौजूद नहीं था। दादाजी को तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, गांव का वातावरण उन्हें बेहद पसंद आया था। और जल्दी ही खाना खाने के बाद दादाजी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। सब लोगों ने ये तय किया था कि कल से वे सब गांव घूमेंगे और उसके बाद खास तौर पर उस जगह को देखने जाएंगे जहां गांव का पिशाच रहता है। तब नानी माँ बोली, हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग हमारे गांव के किसी भी पिशाच का कोई मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि अगर किसी पर पिशाच हावी हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नानी माँ की बात सुनकर सबके सब मुस्कुरा दिए। वही आस्था आज बहुत ज्यादा खुश थी। आज वो अपने जीवन साथी के साथ साथ अपने भाई के साथ गांव आई थी, तो आस्था की खुशी नेक्स्ट लेवल पर थी। हालांकि वो राजवीर जिंदल की जान लेना चाहती थी और उसकी जान अपने माता पिता की बरसी से पहले लेने का मलाल उसे काफी समय तक रहने वाला था, लेकिन वो समझ चुकी थी कि राजवीर जैसे हैवान की जान लेने के लिए उसे पूरी प्लानिंग की जरूरत थी, जो कि अविनाश करने वाला था। अब सब लोग गहरी और सुकून भरी नींद सो गए थे। वहीं दूसरी ओर गांव में एक और इंसान उस वक्त बड़ी ही गहरी नजरों से सारी महंगी महंगी गाड़ियों को देख रहा था। वो कोई और नहीं, वो था दुर्जन सिंह, शारदा जी का दूर का रिश्तेदार, और वो उनकी रिश्ते में भतीजा लगा करता था और आस्था दुर्जन सिंह को चाचा कहकर पुकारती थी। लेकिन दुर्जन सिंह हमेशा से ही नानी माँ और आस्था दोनों से ही नफरत करता था, क्योंकि आस्था के घर को वो हड़पना चाहता था और वहां पर वो अपना एक शानदार रहने के लिए घर बनाना चाहता था। हालांकि उसका खुद का अपना घर एकदम महलों के जैसा बना हुआ था, लेकिन उसकी नजरें आस्था के घर पर भी थीं, क्योंकि वो गांव की करीब करीब आधी से ज्यादा जमीनों को अपने नाम कर चुका था और पूरे गांव को अपने रहमो करम पर वो रखना चाहता था, इसीलिए उसकी नजर आस्था के घर पर भी थी। दुर्जन सिंह जो कि सो ही गया था, लेकिन गाड़ियों की आवाज सुनकर वो जाग गया था और फटाफट से जैसे ही उसने इतनी सारी गाड़ियां वहां आते हुए देखी तो उसका गुस्सा बढ़ गया था, क्योंकि शारदा महल पर उसकी शुरू से ही नजर थी। आस्था के घर का नाम शारदा महल था, जो कि नानी माँ के नाम पर था। फिलहाल दुर्जन सिंह ने सोच लिया था कि अगली सुबह वो जरूर इस बात के बारे में चेक करेगा कि आखिरकार शहर के कौन से लोग किस तरह से गांव में आए हैं, और उनका निशाना बनाकर वो आसानी से नानी माँ और आस्था दोनों को ही फ्रेम कर सकता है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वो सोने की कोशिश करने लगा था। वहीं दूसरी ओर वंशिका को इस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे और वो अरमान और बाकी सबको गांव में एंट्री करते हुए भी देख चुकी थी, लेकिन उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इस गांव में तो उसे कोई नहीं जानता है और इस तरह से मुंह उठाकर भला वो कैसे उन लोगों के साथ जा सकती है। रात का समय था, ऊपर से अकेली लड़की, स्कूटी पर, चारों तरफ खामोशी थी। वंशिका को इस वक्त डर भी लग रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर से नफरत में उबल रहा था। पहले लेकिन वो ये भी जानती थी कि कहीं उसने खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर ली हो, इसीलिए वो अब रात को रुकने के लिए आसपास की कोई जगह देखने लगी थी, क्योंकि वो आज रात सर छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ रही थी। लेकिन पूरा रोड उस वक्त सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत नजर आ रहे थे। उस सुनसान इलाके में वंशिका को केवल उसी की स्कूटी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब जल्दी ही वंशिका की नजर सड़क के किनारे एक छोटे से झोपड़ी पर गई, जहां ट्यूबवेल था, वो जो गांव में खेतों की सिंचाई के लिए चलता है, वो चल रहा था। अब वंशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। हालांकि उसके पास पेपर स्प्रे था, साथ साथ एक शार्प नाइफ भी था, लेकिन एक शहर की लड़की भला गांव में इस तरह से कैसे रुक सकती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन फिलहाल वो झोपड़ी के अलावा उसे कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। नॉर्मली गांव के लोग रातों में अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल को चलाकर छोड़ दिया करते हैं, ताकि पूरी रात लाइट आने पर ट्यूबवेल चलता रहे, तो उसी के लिए वहां पर एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ था। अब वंशिका ने जल्दी ही अपनी स्कूटी पार्क की थी और अपनी स्कूटी पर उसने साइड में से कुछ पत्तियां निकालकर डाल दी थी, ताकि किसी को दिखाई ना दे इस वक्त, और जल्दी ही वो झोपड़ी के अंदर जाने लगी। जैसे ही वो वहां गई, उसने देखा कि वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई थी और एक कोने में मटका ढका हुआ रखा हुआ था। शायद उसमें पानी था। वंशिका का गला भी पूरी तरह से सूख रहा था। खाना वो खा चुकी थी तो इसीलिए उसने थोड़ा सा पानी पिया और उसे झोपड़ी में एक पुरानी सी शॉल या कंबल टाइप का कुछ पड़ा हुआ था। वंशिका ने उसे उठाया और उसे ओढ़कर एक तरफ बैठ गई थी। साथ साथ चाकू उसने हाथ में ले लिया था, क्योंकि पता नहीं कौन रात में आ जाए और कब उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। इसीलिए वंशिका, क्योंकि अब तो रात हो चुकी थी, गांव के लोग बेफिक्र होकर इस तरह से ट्यूबवेल रात को चलाकर छोड़ दिया करते थे और जाकर अपने घरों में सो गए थे। इसीलिए पूरी रात वहां कोई नहीं आया था और झोपड़ी की वजह से वंशिका जंगली जानवरों से भी बच गई थी और कब गहरी नींद में सो गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर सभी लोग खाना खा चुके थे और सभी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे सफर से थके हुए थे, तो किसी ने अपना बिस्तर वगैरह कमरा कुछ ढंग से नहीं देखा था और उस वक्त सभी लोग एक गहरी और सुकून भरी नींद में सो गए थे। सबको बेसब्री से गांव की अगली सुबह होने का इंतजार था। अब वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर प्रियंका को लेकर गांव की तरफ तो जा रहा था, लेकिन क्योंकि वो अरमान से 1 से 2 घंटे देरी से निकला था तो अभी तक वो गांव नहीं पहुंच पाया था। और क्योंकि रास्ते ने रास्ता काफी लंबा था तो इसीलिए प्रियंका ने बहाना बना दिया था कि वो इससे आगे का सफर नहीं कर पाएगी, उसकी तबीयत खराब होने लगी है ज्यादा सफर करने से, क्योंकि वो अबीर के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी। इसीलिए उसने अबीर को रात वहीं गुजारने के लिए बोल दिया था। जिस जगह उन्होंने खाना खाया था वहां पर रुकने के लिए कुछ कमरे भी बनाए गए थे। अब अबीर को ही ध्यान से प्रियंका की एक एक मूवमेंट को नोटिस कर रहा था, साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। अब फिलहाल अबीर को भी इस तरह से रात को उधर जाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर इस तरह से रात को वहां चला जाता तो ना जाने अरमान उसे कितने सारे सवाल करता। और अभी फिलहाल अबीर को जो आस्था और अरमान से उसकी नई नई दोस्ती हुई थी उसे कंटिन्यू करना था। उन्हें बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगने देना चाहता था कि असल में अबीर सिंह राठौर के मन में क्या चल रहा है।
जल्दी ही अबीर ने वहीं पर 2 कमरे ले लिए थे। हालांकि प्रियंका को 2 कमरों में रुकने में एतराज था। उसने इशारों में अबीर से कहने की कोशिश भी की थी कि आप चाहे तो मेरे साथ भी रुक सकते हैं, आई एम श्योर मैं आपकी रात खराब नहीं करूंगी। प्रियंका की डिस्कस्टिंग बातें सुनकर अबीर का पारा हाई हो रहा था। अबीर को दिल तो कर रहा था कि वो इस लड़की को अभी गोलियों से भून डाले, क्योंकि अबीर को ऐसी लड़कियां बहुत जहर लगती थी। क्योंकि अबीर सिंह राठौर जिस माहौल में रहा था और जिस तरह से लड़कियां खुद उसके सामने खुद को प्रपोज दिया करती थीं, तब से उसे लड़कियों से एक अलग तरह की चिढ़ हो गई थी। लेकिन आस्था को जब वो पहली नज़र में मिला था और आस्था ने उसे किसी तरह का कोई भाव नहीं दिया था, तब उसे आस्था से एक अलग तरह का अट्रैक्शन हो गया था। उस अट्रैक्शन को वो प्यार समझ बैठा था और उसे अपना बनाने की जिद कर बैठा था। लेकिन अब शायद अबीर सिंह राठौर कुछ और करना चाहता था। वो क्या था ये तो हमें आने वाला समय ही बताने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग, इस रात के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत सुबह होने का इंतजार कर रही थी। ठीक सुबह के 5 बजे, हालांकि हमारे सभी लोगों को तो सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन क्योंकि वो लंबे सफर से थक कर आए थे तो इस वक्त किसी का उठने का कोई इरादा नहीं था। और आस्था तो अब सुकून से अपने बिस्तर में, जहां पर उसने अपनी जिंदगी का कितना सारा हिस्सा गुजारा है, तो उसे बिस्तर में घुसकर एक अलग ही लेवल का सुकून महसूस कर रही थी और एकदम अरमान से बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे तो उसकी जिंदगी के सारे सुख मिल गए हों। जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसका जीवन साथी इस वक्त उसके साथ था, ऊपर से उसके फेवरेट बिस्तर पर, फेवरेट जगह पर था। तो इस वक्त आस्था की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। अरमान उसके बेहद करीब था। अरमान के हारमोनियम सिस्टम आस्था के करीब आने से काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे, लेकिन अरमान सिंघानिया को हर चीज पर कंट्रोल था। अब सुबह के 5 बज चुके थे और सुबह के 5 बजते ही गांव के मुर्गों ने बांग देना शुरू कर दिया था। अब तो अरमान, आकाश, सुमित को मुर्गे की बांग बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। वहीं अविनाश के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट थी। अविनाश ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी विदेश में गुजारी थी और अब इस तरह से गांव का ये खूबसूरत समा उन लोगों को एक अलग ही लेवल की खुशी दे रहा था। लेकिन आहान और ध्रुव, साथ साथ रौनक और एंजल, चारों के चारों थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे, क्योंकि वो उस वक्त और सोना चाहते थे। उस वक्त उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मुर्गे तो बड़े जोरों से बांग दे रहे थे। और तभी नानी माँ भी मुस्कुराते हुए उठ बैठी थी। आस्था भी मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि बड़े दिनों के बाद उसने इस तरह से मुर्गों की बांग सुनी थी, तो उस वक्त उसे बड़ी ही खुशी हो रही थी। अब जैसे ही आस्था उठकर बैठी, अरमान भी उठकर बैठ चुका था और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। तब आस्था अरमान को देखकर बोली, देखा आपने हमारे गांव की सुबह कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। तब अरमान ने मुस्कुराकर आस्था के माथे को चूमते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल आपके जैसे खूबसूरत। अब आस्था शर्मा उठी थी और उठकर उसने जल्दी ही अपने कमरे की एक खिड़की को खोल दिया था और जल्दी ही सुबह सुबह की ठंडी ठंडी ताजी हवा ने जैसे ही आस्था के चेहरे को छुआ, आस्था आनंद से भर उठी थी। वहीं अरमान मुस्कुराकर आस्था के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया था। आस्था को पीछे से गले से लगाकर बाहों में भरकर वो भी प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने लगा था।